मुझे अपनी माँ की कसम इनसे तुम्हारा इंतकाम लेके रहूंगा। ए आली,
मशीन गन वाला
क्या,
आरपीजी चलाने वाला
क्या,
उनके आरपीजी चलाने वाले को ढूंढो, अफराद का कत्लेआम कर रहा है।
बेगैरत तू,
या हुसैन
तुम दोनों जाओ मोर्चों के दरमियान मशीन गन पे बैठ जाओ,
ये बेगरज जरूर दोबारा आएंगे, मुझे हर नई बात की खबर दो, जाओ शाबाश।
ओके सर।
क्या हाल हो गया अहमद?
हमें यहाँ रुकना गलत है।
शर्म नहीं आती इसे बड़दबड़ में?
बताओ हम कर भी क्या सकते हैं, ये लोग कामयाब हों शिकस्त खाएं हमें क्या लेना देना।
अगर ये कामयाब ना होते तो हम आज जिंदा ना होते।
यहाँ रहोगे तो भी जिंदा नहीं बचोगे। कैप्टन साहब कह रहे थे कि दुश्मन मौके की ताक में 2 घंटे बाद फिर हमला करेगा।
तुम्हें जाना है तो जाओ।
फिलहाल तो मुझे एक सिगरेट चाहिए, देखो किसी से सिगरेट मिल सकती है क्या।
तुम दोनों नीचे आओ, मेजर को ले जाना है,
एम्बुलेंस में डाल दो।
यहाँ रह सकता हूँ कैप्टन साहब?
जाओ जाओ।
बड़ी मेहरबानी।
तुम्हारा नाम क्या था रजाकार?
किसका? मेरा? असद।
मैं माधु।
असद, तुमने बहुत बहादुरी दिखाई, अब तुम दोनों की तरफ से मुतमईन हो गया।
सच कह रहे हो कैप्टन साहब?
सिपाही कह रहे थे कि रॉकेट चलाने वाले को तुमने मारा।
इत्तेफाकी तौर पर लग गया।
यूं नहीं कहते जनाब, कहते हैं खुदा का काम था।
हाँ वही।
करीम की टांग में गोली लगी है, गाड़ी नहीं चला सकता। बाकी अफराद की तादाद भी कम है, उनको भी नहीं भेज सकता। ये काम सिर्फ तुम और तुम्हारा दोस्त कर सकता है।
कौन सा काम कैप्टन?
जो अफराद ज्यादा जख्मी नहीं है वो यहाँ रहेंगी, बाकी जख्मी और शहीदों को एम्बुलेंस के जरिए वापस ले जाना है। इसके बाद तुम दोनों को तीन काम और करने हैं।
कौन से काम?
मोर्चे पर रॉकेट लगने की वजह से वायरलेस तबाह हो गया है। 15 किलोमीटर नीचे कुमेल चेक पोस्ट है, उनसे कहना अगर 1 घंटे तक यहाँ न पहुँचे तो दुश्मन यहाँ के सब अफराद को भून डालेगा। उसके बाद सिपाह के बैसत बेस जाके हाजिन मोहसिन खैरी को ये लेटर देना है। अगर ये लेटर असर तक बेसत कैंप तक नहीं पहुँचा तो मुनाफिकीन पूरे इलाके पर कब्जा कर लेंगे। उस तरह से सलामताबाद में हमारे सारे अफराद आगे पीछे से मुहासिर में आ जाएंगे। तीसरा काम यह है कि इस लेटर को पावे के मिलिट्री कैंप ले जाना और वहाँ पर मेजर लश्करी से अपना तारुफ कराना ताकि वो तुम्हारे सिलसिले में फैसला करे।
गुस्ताखी माफ साहब, क्या हम लोग ये तीसरा काम कर पाएंगे?
खुदा को जो मंजूर होगा वही होगा। अब खड़े होकर मेरा मुंह क्यों तक रहे हो? जल्दी जाओ यहाँ से।
जी।
मोहसिन खैरी बेस में नहीं है, अपने अफराद के साथ सलमताबाद गए हुए।
तुम्हें कहाँ से मालूम?
ये झूठ बोल रहा है।
मैं उनको जानता हूँ।
ठीक है, उनके मुआविन को दे देना।
मतलब ये लेटर फलाह को दूं?
क्या फलाह को भी जानते हो? अफसोस है कि फुर्सत नहीं है, वरना मुफस्सल बात करता। लेटर फलाह तक पहुंचा दो, उन्हें मालूम है क्या करना है।
हाँ,
लेटर फलाह को दे दो, वो खुद जानते हैं कि क्या करना है। जाओ यहाँ से जल्दी से।
ठीक है चलो सर, टाइम नहीं है, चलो।
या हुसैन,
इसको भी साथ ले जाओ।
कैप्टन साहब, कहीं रास्ते में उन बेगैरतों से सामना ना हो जाए।
अगर हिम्मत से काम लोगे तो कुछ नहीं होगा।
ठीक है,
हम आप ड्राइविंग करो।
असद।
जी कैप्टन साहब।
क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ?
मैं क्या कह सकता हूँ,
कुछ तो कहो।
मोहसिन खैरी ने हज नहीं किया है।
जाओ, खुदा तुम्हारे साथ है।
मोड़ों पर स्पीड कम रखो ताकि पीछे के अपराध एक दूसरे पर ना गिरे।
एक दूसरे पर गिरना बम का गोला गाड़ी पर गिरकर तबाह होने से कहीं बेहतर।
अब खतरे के इलाके से निकल आए हैं, यहाँ अमन है।
हमारी सलामती और भलाई इसी में है कि यहाँ से भागकर सीधे तेहरान चले जाएं।
वापस जाएंगे तो अब तक जितनी तकलीफें उठाई हैं सब बेकार हो जाएंगी।
यहाँ की हालत तो देख ही रहे हो बेवकूफ, मुसीबत पर मुसीबत आ रही है, समझे क्या?
खजाना हमारे बिल्कुल करीब है।
ये खजाना मेरी गर्दन की रग से नजदीक भी हो जाए तो भी मुझे ये खजाना नहीं चाहिए, समझे?
किस्मत में मरना होता तब तक मर जाते।
मौत इत्तला देकर नहीं आया करती, कभी भी मर सकते हैं।
ये देख रहे हो गोली के निशान? जब मैं मशीन गन चला रहा था उस वक्त ये हेलमेट पर लगी थी।
किस्मत अच्छी थी, अगली बार सीधे दिमाग में घुसेगी।
जेल पर मिसाइल लगा और हम जिंदा बच गए। उसके बाद जाबिर पीछे लगा, कुछ नहीं कर सका। मुनाफिकीन कहते चढ़े लेकिन जिंदा बचे। उन्होंने पीछे किया लेकिन हमारी खातिर होशियार की जान चली गई। बेस पर हमला हुआ लेकिन हमारी जगह न शहीदों में थी न जख्मियों में। गोली सीधे आकर मेरे हेलमेट पर लगी लेकिन मैं फिर भी जिंदा बच गया। इन सब बातों का मतलब क्या है?
मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमें मानवीय बातों से क्या लेना देना।
ये इतनी भी मानवीय बातें नहीं हैं। इन सब बातों का मतलब ये है कि हम सलमताबाद की तरफ जाएं और वो खजाना जो मेरे अजदाद की मिल्कियत है उसको निकालें और अम्मी जान और मर्जिया को इस हालत ज़ार से निजात दें।
मैं तो अगर इस रास्ते से जिंदा बचा तो सीधा तेहरान जाऊंगा, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे मेरे पीछे जावेद ही क्यों ना पड़ा हो।
खजाने का रास्ता कठिन है अमाद, मुझसे अकेले नहीं हो पाएगा।
ये तुमने सही बात की ऐसा छुई मुई
मैं हूँ या तुम? चेक पोस्ट में कौन खौफ से लड़ रहा था? मैं तो मशीन गन चला रहा था। मैं दिखाता हूँ तुम्हें मेरी बातों की दलील।
सुराख तुम्हारी बेवकूफी की अलामत है। अगर तुम में अकल होती तो एक कोने में मेरी तरह बैठ कर नजारा करते। इतनी डिंगे मारने के बजाय रास्ते पर ध्यान दो, कहीं दुश्मन हमला न कर दे।
तुम्हारा बॉस कौन है? बुलाओ, काम है उससे।
क्या काम है?
प्राइवेट है, नहीं बता सकता।
किस पलटन से हो?
सवालात बाद में करना, जल्दी बुलाओ।
तुम्हारी पैंट दिखने में रजाकार वाली है, शर्ट फौज की है, क्या तुम जासूस हो?
भाई जाओगे या मैं खुद जाऊं?
मेरी लाश पर से गुजर कर जा सकोगे? अपना असला जमीन पर रखो और हाथ ऊपर उठाओ, जल्दी हाथ ऊपर उठाओ। क्या हुआ खलज? जनाब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, इनकी तलाशी ले रहा हूँ।
जनाब मैं अलगदीर चेक पोस्ट से आया हूँ। मुनाफिकीन ने हमला कर दिया, हमने मुकाबला किया, बहुत से अफराद शहीद और जख्मी हो गए। कहा कि अगर एक घंटे तक मदद को नहीं पहुँचोगे तो कोई जिंदा नहीं बचेगा।
हाथ नीचे करो।
शुक्रिया।
अब सही तरह से पूरी बात बताओ, क्या हुआ है?
जो हुक्म। ठीक है, मैं अलगदीर चेक पोस्ट से आया हूँ। वहां पर जनाब कैप्टन साहब ने हुक्म दिया कि आके आपको बता दूं कि अगर मदद ना भेजी गई तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अब ये भी बताता हूं। क्यों? क्योंकि मुनाफिकीन ने अचानक हमला कर दिया। क्यों? इसलिए कि वो बहुत बेगैरत लोग हैं। पर चूंकि मेरा निशाना अच्छा था तो मशीन गन चलाने वाले की शहादत के बाद मैंने जाके मशीन गन संभाली और उनके रॉकेट लॉन्चर चलाने वाले को खत्म कर दिया। और भी सुनाऊं? बोलो।
या हुसैन ये क्या हाल है?
वहां पहुंचते पहुंचते तो ये बेचारे खत्म हो जाएंगे।
कैप्टन साहब हमारे पास बस यही एक एम्बुलेंस थी।
ठीक है, शहीदों को तुम ले जाओ और जख्मियों को हम अपनी एम्बुलेंस में डाल लेते हैं। खालिद।
हाँ जी जनाब।
जल्दी से एम्बुलेंस तैयार कर लो, फौरन। मेजर कलांते,
चलो जल्दी करो, जल्दी
यहां पर आ जाओ।
जी सर। गाड़ी निकालो जल्दी।
ओके सर, सारा एम्बुलेशन तैयार करो, सब चलते हैं अलगदीर चेक पोस्ट की तरफ सब। या अली, जल्दी 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 करो, सब गाड़ियों में पेट्रोल डाल दो, दौड़ो, जल्दी करो, जल्दी करो, चलो जल्दी करो, जल्दी करो, गाड़ी स्टार्ट करो, जल्दी, चलो जल्दी करो, चलो फौरन, हम चेक पोस्ट जा रहे हैं, यहां का ख्याल रखो, चलो जल्दी करो।
अहमद बैठो, चलें।
आखिरी लाइनें चलते हैं।
क्या पढ़ रहे हो?
मोहसिन खैरी का खत है।
अरे कहा तो था कि सीक्रेट है।
प्राइवेट वालों के लिए सीक्रेट है, ये तो हमारे भाई हैं। आओ चलो चलते हैं।
मानता नहीं है यार।
बैठो, आखिर पता तो चले कि हम क्या लेकर जा रहे हैं।
इंस्पेक्टर साहब को आने दो, तुम दोनों ने मुझ पर हमला किया है, मैंने ही फोड़ा है, मुझे पता है क्या करना है, यही जगह है ना? सलाम अलैकुम।
उधर जाके बैठो।
अच्छा तो सर फाड़ते हो, समझते हो कि बच जाओगे, ऐसा नहीं होता है क्या?
मुझे क्या, इंस्पेक्टर साहब देखे मेरा सर भी फोड़ा है और अब भी जमा रहा है।
क्या बकबक कर रहे हो, कहा ना खामोश।
हमें यहाँ पर जाबिर नाम के किसी पुलिस वाले के खिलाफ कोई शिकायत नहीं मिली है। शिकायत करने वाला कौन है?
तला साहिबा, हमारे मकान मालकिन तला साहिब जम।
इस नाम से कोई शिकायत करने नहीं आया है? ना शिकायत करने वाला, ना जिसके खिलाफ शिकायत है।
मेरी अम्मी भी यही सोच रही थी। अगर मैं इस जाबिर के बारे में मालूम करना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा?
आपको क्राइम ब्रांच जाना होगा, अलबत्ता सिर्फ फैमिली नाम से आपको मिल जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है।
मेरा भाई कह रहा था वो सुराग रसा है, जिस फर्द को ढूंढना मुश्किल होता है उसे उसके हवाले कर देते हैं, कहा सब उसको जानते हैं।
क्राइम ब्रांच में मेरा एक दोस्त है, मैं देखता हूँ कि वो आपकी कुछ मदद कर पाएगा या नहीं।
बहुत बहुत शुक्रिया भाई।
सलाम मसूद भाई, शुक्रिया, मैं ही बोल रहा हूं। मसूद, मुझे तुमसे एक काम था।
कुछ नहीं कहना चाहोगे?
क्या कहूं जनाब,
आखिरकार इस खातून को जवाब तो देना ही पड़ेगा।
सलाह नहीं है, आप खुद बेहतर जानते हैं।
देख रहे हैं डीएसपी साहब, ये साहब अभी अकड़ दिखा रहे हैं।
लेकिन मैंने कहा अकड़ दिखाई? डीएसपी साहब आप ही बताइए।
देखिए जाबिर साहब, जब तक मैं आपको अदालत नहीं पहुंचा देती यहां से जाने वाली नहीं हूं। फजूल में खुशामद ना करें, इस तरह मैं पिघलने वाली नहीं।
खुशामद की बात नहीं है मोहतरमा, बाज़ बातें ऐसी हैं जिनका जानना मुनासिब नहीं है, खुद आपके हक में बेहतर नहीं है।
डीएसपी साहब आप ही बताइए कि आप इनके बॉस हैं या नहीं, आपको अपने अफराद के कामों की खबर होनी चाहिए या नहीं, तो आप इनसे एतराफ क्यों नहीं ले रहे हैं?
मुझे सब कुछ मालूम है।
बहुत अच्छी बात है, तो आप सब हमारे खिलाफ हो गए हैं, तो क्या आपका डिपार्टमेंट एक बेसहारा माँ और बेटी से इतना डर रहा है?
मोहतरमा आप एक हफ्ता सब्र कर ले, मैं खुद आपको सारी हकीकत बता दूंगा।
एक मिनट तो क्या, एक सेकंड भी सब्र नहीं करूंगी। ये साहब हमारे घर में घुसाए थे, इनको अपने किए की सजा मिलनी चाहिए बस।
भाई साहब, ए भाई, खुदा तुम्हारा भला करे, जाते हुए ये खत भी फला साहब को दे दे।
ये कैसा खत है?
आपको इससे गरज नहीं होनी चाहिए, आप बस इसे फला तक पहुंचा दें।
अब खुद
जनाब, आपको इससे क्या कि मैं कौन हूँ और खत में क्या लिखा है, आप बस फला को दे दे, ये मौत और जिंदगी का सवाल है।
हाँ।
अमाद,
क्या है?
मसला हल हो गया, वो साहब खत को फला तक पहुंचा देंगे।
तो स्टार्ट करो, चलते हैं।
तेहरान?
नहीं, सैन फ्रांसिस्को।
देखो, अब हमारे पास गाड़ी भी है और असला भी। इन तीन शहीदों के जनाजों को किसी जगह ले जाकर हवाले कर देते हैं, फिर मदद के बहाने आराम से सलमाबाद की तरफ निकल जाएंगे
बगैर किसी परेशानी के। मेरे भाई, जो देख रहे हो ये हाल है, अगर फ्रंट लाइन पे गए तो कयामत होगी, पूछो मत। नहीं मेरे भाई, या तो चलो तेहरान चलते हैं, या तुम बिना एम्बुलेंस के खजाने के पीछे जाओ।
मुझे अकेले में इतनी जुरात नहीं है, मुश्किल है बल्कि नामुमकिन है, अफसोस की बात होगी।
अफसोस तो उन पर है जो खामखा मर गए, हमें तोप और टैंक से क्या लेना देना, हम तो बस इसलिए पैदा हुए हैं कि उसका माल इसकी और इसका माल उसकी जेब में डालें, बस।
अहमद यार,
यार बियार को मारो गोली, तेहरान चलते हैं, 10 साल बाद जब जंग खत्म हो जाएगी तब आकर खजाना निकालेंगे। अब जाकर गाड़ी स्टार्ट करो और उसका मुंह तेहरान की तरफ कर दो।
अहमद मान लेना।
अरे तेरी तो।
मेरी बड़ी बहन, ये लड़का मुझसे इतना घुला मिला है कि हर बात में मुझ पर गया है। यानी अगर मुझे कोई बीमारी हो गई, हालांकि मुझे ख्याल रहता है कि ये बीमारी उसको ना लगे, रात आने से पहले पहले वो हर बीमारी जो मुझ में है पूरी की पूरी उसमें आ जाती है अपने आप।
सच कह रही हो?
हाँ मैं सच कह रही हूँ। मुझे याद है 1947 की बात है, ये लड़का 4 साल या 5 साल का होगा ज्यादा से ज्यादा। हम लोग उस वक्त बाबा यान हिसामु सल्तना पार्क के पीछे रहते थे। हमने छत पर एक कमरा किराए पर ले रखा था, उसको आधा कमरा कहना ठीक होगा। बाथरूम और किचन 2 मंजिल नीचे सहन में दूसरे किराएदारों के साथ मुश्तरक था। मैंने अपनी बातों से आपके सर में दर्द करा दिया क्या? अगर कहें तो कुछ ना बोलूं?
नहीं तला खानुम, ऐसी कोई बात नहीं है। जब आदमी की उम्र गुजर जाती है तो पुरानी बातें याद करने में बड़ा मजा आता है, अच्छा लगता है। बस बस, तो तुम कुछ कह रही थी?
मुख्तसर ये कि उन्हीं दिनों में मैंने बदपरहेजी कर दी और 2 किलो खरबूजा एक ही साथ खा गई। बस फिर क्या था मेरी बहन, ऐसा लर्जा और बुखार हुआ कि क्या बताऊं। पूरे 3 दिनों तक तड़पती रही। जब 3 दिनों के बाद होश आया तो देखा मेरे इस शहजादे को लर्जा और बुखार हो गया था। डिस्पेंसरी भी सीना रोड पर थी, जाकर दिखलाया, दवा ली, मगर कोई असर नहीं। एक हकीम को जानती थी जो गली के उस तरफ बैठता था, उससे 3 मर्तबा दवा ली मगर कोई फायदा नहीं। लोगों ने कहा बड़े अस्पताल में ले जाओ, मैं लेकर भी गई उसे वहाँ मगर कोई फायदा नहीं हुआ। मैं क्या बताऊँ मेरी बहन, जहाँ जहाँ जिस जिसने कहा मैं लेकर गई उसे मगर कोई फायदा नहीं हुआ। उसके पेशानी पर हाथ रखने से लग रहा था जैसे अभी जल जाएगी। मेरा भी काम बस रोना धोना हो गया था। पूरे 3 हफ्ते तक ये बच्चा लर्जे और बुखार में मुफ्तला रहा। मैंने कहा मेरे खुदा, अगर इस बच्चे को लेना ही चाहता है तो मुझे इतना क्यों सता रहा है। मैं कुफ्र बकने लगी। मैंने सामान समेटा और इमाम रजा के हरम में जाकर बैठ गई और मैंने कहा, ऐ मेरे मौला, मैं हर जगह से मायूस होकर आपके पास आई, या तो आप इस बच्चे को सही उस साल मेरे पास लौटा दे या आपके हरम में इतना बैठूंगी कि दम तोड़ दूंगी। मैंने ये बोल दिया।
आगे नहीं सुनाओगी?
अब बोलने को रह क्या गया है। सूरज डूबने से पहले उसका बुखार उतर गया। ये खिचड़ा भी उसी की नजर है जो अब तक बाकी है और पड़ोसियों को बांटा जाता है। ये मेरे बेटे के ठीक होने की नजर है।
खुदा उसको सलामत रखे।
बस एक अच्छी सी लड़की उसके लिए मिल जाए, फिर खुदा से कुछ नहीं मांगूंगी।
इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्दी मिल जाएगी।
मिल तो गई है, बस उसकी हाँ का इंतजार है मुझे।
इंशाल्लाह हाँ भी कह देगी।
लेकिन लड़की की माँ की मर्जी भी तो जरूरी है ना, ये तो पहली शर्त होती है ना।
हाँ हाँ बिल्कुल।
मैं जानती हूँ कि बिना कुछ देखे कहना मुश्किल होता है, लेकिन आप फर्ज करें कि मेरा बेटा बिल्कुल मेरे जैसा है। अगर मैं आपको पसंद हूँ तो मेरा बेटा भी पसंद होगा। आप यकीन करें बड़ी बहन, मैंने जब से दोनों को देखा है ना, मैं जानती हूँ मेरा बेटा और आपकी बेटी दोनों हम पल्ला हैं। मैं अपने बेटे की कसम खाकर कह रही हूँ ये बात। फिर भी जैसा आप कहेंगी वैसा होगा, लेकिन ना ना कही क्योंकि बदशगुनी होगी।
लेकिन बिना देखे परखे तो नहीं?
आप एक बार हाँ तो करके देखें, मौका आने पर देख भी लेंगी और पहचान भी लेंगी। मंजूर है?
अम्मी जान सामान समेट ले चलते हैं।
ये
जनाब इस गाड़ी की चाबी अंदर है, इस गाड़ी को बाहर ले जाकर पिकअप को अंदर लाएं जल्दी।
मर्जी है बेटी, दूसरा घर मिल गया है, जा रही हूँ।
अम्मीजान मैं कह रही हूँ ना, चलिए यहाँ से।
सामान समेट कर कहाँ जाएं?
सामान को एक स्टोर में रखवा देंगे, हसन साहब को कह आई हूँ। खुद किसी मुसाफिर खाने में चलते हैं जब तक तो कोई किराए का घर नहीं मिल जाता।
किस लिए जाना होगा?
इन तला साहिबा से पूछिए, हमें चारा बनाया गया है, चारा।
अरे ये क्या?
उठो अहमद।
क्या है? तुम ही कुछ कर लो, मेरा दिमाग सो रहा है।
अहमद तुम्हारा सोया हुआ दिमाग भी मुझसे बेहतर चलता है, मैं बात करूंगा तो फंस जाऊंगा यार। अहमद
भाई, बाहर जाने का इजाजत नामा।
इजाजत नामा पीछे
तो ला के दिखा दो।
आओ दिखाता हूँ।
सिपाहियाने इस्लाम की सलामती के लिए सलवात।
कहाँ से आ रहे हो?
अलगदीर पोस्ट से, मुनाफिकों ने हमला कर दिया था। इनको भी शहादत नसीब हुई, हम जाएं?
इनको कहाँ ले जा रहे हो?
पावे छावनी।
इजाजत नामा दिखाओ।
अब भी इजाजत नामा
जरूरी है मेरे भाई?
नहीं है, कहो तो वापस चला जाऊं।
ये कैसे हो सकता है?
महाज जंग से निकलने का कानून यही है।
कानून उन हालात के लिए है जब अमन व अमान हो, लेकिन जब जंग छिड़ी हुई हो, गोलियां बरस रही हो, उस वक्त कोई इजाजत नामा मांगेगा क्या?
मतलब लड़ाई इतनी सख्त थी?
अभी तुमको पता चल जाएगा। मुझे नहीं लगता कि मेरे अलावा कोई और जिंदा बचा हो। अब मुझे जाने दोगे कि इसकी लाश को यहीं जमीन पर छोड़ जाऊं?
मोहम्मद जी,
क्या अलगदीर पोस्ट पर हमला हुआ है?
जी कहते हैं कि बहुत शदीद लड़ाई हुई है।
अब मैं जाऊं?
बिस्मिल्लाह,
बहुत शुक्रिया।
क्या हुआ?
जान छूटी, एम्बुलेंस को भगा, इसे किसी अस्पताल के सामने छोड़ देंगे और सीधे तेहरान निकल चलेंगे।
ले लो, दरवाजे और दीवार का ख्याल रखना, खराश ना लग जाए। यही आओ आओ आओ। हाँ ठीक है ठीक है, गाड़ी बंद कर दो। देखो भाई, जब तक तुम सहन में पड़ा सामान गाड़ी में रखते हो, तब तक हम नीचे जाके बाकी का सामान और कार्टन ले आते हैं। आ जाओ।
मर्जी है बेटी, माफ कर देना मुझे। चारा बनने से तुम्हारा क्या मतलब है?
आप तो अच्छी तरह से जानती हैं तला साहिबा, ये जाबिर साहब इन्हीं तला साहिबा के बेटे हैं। इन दोनों ने मिलकर हमारे जरिए असद तक पहुंचना चाहा। अम्मी जान, आप मदद करने आएंगे या मैं खुद ही सामान उठाकर लाऊं?
जब मैं अपने दोस्तों को इन दो तीन दिनों का किस्सा सुनाऊंगा तो वो हैरान रह जाएंगे। किस्मत अच्छी थी जो अभी तक जिंदा है।
लेकिन मेरे दिल में कयामत बरपा है।
क्या कहा? मशीन गन चलाने का नशा अभी तक बाकी है?
मरने मारने की वजह से नहीं कह रहा। शायर कहता है, चांद सूरज और बादल सब मिलकर हमें बाबा के खजाने तक पहुंचाना चाहते हैं, पर हम दोनों बेवकूफी करके वापस जा रहे हैं।
इस हेलमेट में गोली के सुराख को देखकर पहचान जाओगे कि सूरज और चांद हमें कहां ले जा रहे हैं। ये लो, अपने पास रखो। अगर रुक जाते तो खजाना इस दुनिया में नहीं, उस दुनिया में मिलता मेरे भाई। तो कोई नहीं है। तुम्हें यकीन है कि यही दाइची गांव है?
हाँ भाई, बॉर्डर पर तो यही लिखा हुआ था।
कोई है? कोई है? अरे कोई है?
किसको बुला रहे हो?
कोई भी नहीं है।
क्या हुआ? गोली चली ना?
मुझे क्या मालूम, यहां तो कोई भी नहीं है। आउट आउट, चलो बेवकूफ, रुक क्यों गए?
क्या करें क्या करें क्या करें? यहां चुप जाते। कहां फंस गए यार?
मुझसे पूछ रहे हो क्या करें? तुम ही तो मुझे जहन्नम में लाए हो।
तुम चारों तरफ से मुहासरे में हो, समझे?
برام هیچ حسی شبیه تو نیست، کنار تو درگیر آرامشم، همین از تمام جهان کافیه، همین که کنارت نفس میکشم. برام هیچ حسی شبیه تو نیست، تو پایان هر جستجوی منی، تماشای تو عین آرامشه، تو زیباترین آرزوی منی. منو از این عذاب رها نمی کنی، کنارمی به من نگاه نمی کنی، تمام قلب تو